क्या होता है ना, बहुत सी बातें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे काबू में रहें, हमारी लाइफ हमारे काबू में रहे। और लाइफ काबू करने के चक्कर में हम सोचते हैं हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर लें, हम हमारे बेसिक नेचर, हमारा जो बेसिक नेचर है उसको कंट्रोल कर लें। और यहीं पर सारे मसले शुरू होते हैं, यहीं से जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में उन सब की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो क्या होता है कि एक चीज़ है, आप नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचर आपने नहीं बनाया, आपको नेचर ने बनाया। और जिसने आपको बनाया है सिर्फ वही आपको कंट्रोल कर सकता है। समझ पा रहे हो? जैसे आपने कलम बनाई, आपने कागज़ बनाया, तो आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को यूज़ करते हो, उन चीज़ों को कंट्रोल करते हो। आपका जब मन में आता है आप लिखते हो, आपका जब मन में आता है आप नहीं लिखते, राइट? कभी मन किया आपने कागज़ फाड़ के फेंक दिया, कभी मन किया आपने कागज़ को अच्छे से फोल्ड किया, समेटा, उसके बाद रखा। तो क्या कागज़ आपको कंट्रोल कर सकता है? नहीं, कागज़ आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसको बनाया है। उसी तरह हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचर हमें कंट्रोल कर सकता है। हम किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारी लाइफ डिसीजंस को, मे बी हम हमारी डे टू डे लाइफ्स में जो डिसीजंस लेते हैं मे बी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आई गेस सो। ज़्यादातर केसेस में तो कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं उन थॉट्स के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के डिसीजन लेते हैं, जिसके चक्कर में हम डिसीजन गलत ले लेते हैं, है ना? और ये चीज़ मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप कोई डिसीजन लो तो उसको इमोशनली मत लो। डिसीजन हमेशा दिमाग से होना चाहिए, फिर वो डिसीजन चाहे आपका रिलेशनशिप का हो, या आपके करियर का हो, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, पानी पीने से लेके सुबह उठने से लेके रात में सोने जाने तक सारे डिसीजन आपके दिमाग से होने चाहिए, दिल से नहीं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम दिल से फैसले लेते हैं ना, तो दिल जो है बहुत चंचल है। सुना होगा ना, अपने दिल बहुत चंचल है। वो चंचलता में हम फैसले लेंगे ना तो हमेशा सही नहीं होगा। कभी कभार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब आप दिल से फैसला लेते हो तो वो चीज़ सही निकलती है अपने लिए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो फैसला गलत साबित होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपके इमोशंस काम नहीं आ रहे ना। इमोशंस आर नॉट 100% प्रैक्टिकल चीज़, अगर आप उसको सोचोगे। प्रैक्टिकलिटी जो है वो आपके ब्रेन से आती है, आपके माइंड से आती है। इमोशंस से प्रैक्टिकलिटी का ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्यों? इमोशंस आपके अंदर की बात है, लेकिन आपके इमोशंस के चक्कर में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली इफेक्ट होगा। जैसे अभी हम उसकी बात कर रहे थे ना डिसीजंस की, जब हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, इमोशंस में बह के डिसीजन लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे एक गलत फैसले से, अब हमने वो डिसीजन तो हमारे इमोशंस में रह के किया, लेकिन हमारे उस गलत फैसले की वजह से जो इफेक्ट है वो हमारी लाइफ में आने वाला है। तो टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इमोशनल फैसले से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इफेक्ट डाल रहे हैं। समझ पा रहे हो? ट्राई करो थोड़ा समझने की, थोड़ा सा फिलोसफिकल है आज, थोड़ा सा अगर लेंदी भी हो जाए तो मेरे साथ बने रहना। बहुत कुछ है आज, आज मुझे भी बहुत कुछ बोलना है और शायद आपको भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। सो लेट्स सी। ओके, सो जब हम माइंड के डिसीजन की बात करते हैं तो माइंड जो है वो रैशनली सोचता है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग होती है ना? हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं और अगर मैं बेनिफिट्स एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ तो क्या मैं कॉन्सिक्वेंसेस भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो हम मिस आउट कर देते हैं हमारे डिसीजंस में, हम मिस आउट कर देते हैं हमारी लाइफ में। वो हमें नहीं करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर डिसीजन लेने जा रहा हूँ, वो डिसीजन चाहे हम इमोशनली लें या मेंटली लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है वो किसी और टॉपिक में, अभी मैं आगे जब हम बात करेंगे तब और डिटेल में खुल के बात करेंगे। अभी पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम कोई फ़ैसला लेते हैं, मे बी वो इमोशनली हो या मेंटली हो, तो हर चीज़ के बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि मुझे पॉजिटिव चीज़ चाहिए और नेगेटिव नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच के कोई फैसला करते हो ना, सो दैट मीन्स कि आप किसी गलत रास्ते पर हो, आपने कुछ गलत सोच लिया, आपने कुछ गलत अज्यूम कर लिया चीज़ों के बारे में, और आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, बहुत ही गलत डायरेक्शन में देख रहे हो। क्योंकि हर चीज़ का एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट होता है, हर चीज़ एक बेनिफिट और एक कॉन्सिक्वेंस के साथ आती है। तो जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये भी क्लिक होना चाहिए कि अगर ये बेनिफिट मुझे मिल रहा है तो इसके साथ मुझे कॉन्सिक्वेंस भी मिलेगा और मुझे वो फेस करने के लिए भी तैयार रहना है। क्योंकि दोनों चीज़ें अलग नहीं है मेरी जान, दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं, आपस में स्टिक होती हैं, एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब आप एक चीज़ अपनी लाइफ में लाते हो तो उसके साथ आपको दूसरी चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, चाहे ना चाहे। फिर आप चाहे कुछ भी सोचो, आपकी चाहे मर्जी हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में तकलीफ क्यों है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मुझे तो खुशी चाहिए। हर कोई सोचता है, मैं भी सोचता हूँ, कभी कभी हो जाता है, इंसान है, ह्यूमन नेचर है, कभी कभी दिमाग चला जाता है उस वे में, जब हमें लगता है कि यार लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, लाइफ में सॉल्यूशंस कम है, प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन उस टाइम पे अगर हम ये याद रखें कि हम अगर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की डिमांड करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें भी तो हैं, उसका क्या होगा? जो नेगेटिव चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और जो नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनका क्या होगा? उन चीज़ों के साथ क्या करें? उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। बिकॉज नेचर ने जो चीज़ें बनाई है, एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग, है ना, एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका भी एक लॉजिक है, उसका भी एक रीज़न है। कोई भी चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाएगी, कोई भी चीज़ कभी भी फालतू नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करोगे उसका एक मतलब है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अटेम्प्ट करते हो या सीखते हो, लेट्स से कई बार होता ना कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तब तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं उस चीज़ के लिए कि लेट्स से अ करियर, ठीक है, लेट्स से थोड़ा सा करियर की तरफ जाएं, तो कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, अब मैं इसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल लगाऊंगा और 1 साल में ये चीज़ तो हो ही जाएगी डेफिनेटली। हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम उसको करते हैं, 1 साल का हमने डेडलाइन लिया था, 1 साल तक हमने बिना रुके नॉन स्टॉप वो काम किया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी अपने दिमाग में, हमने जो सोचा था कि 1 साल के बाद हो जाएगा, वो नहीं हुआ। लेट्स से हम कामयाब नहीं हुए, हम फेल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ सोचोगे तो क्या आप एक्चुअल में वहाँ फेल हुए हो? क्या लगता है? अगर आप मुझसे पूछोगे ना हल से कि आप वहाँ एक्चुअल में फेल नहीं हुए हो, क्योंकि वहाँ से आपने कुछ ग्रैब किया है, वो क्या है? वो है आपका एक्सपीरियंस। अब आपने वो 1 साल तक किया, 1 साल मतलब 365 days, राइट, 365 days तक आपने रोज किया वो, और आपने इतना कुछ सीख लिया कि अब कल को आपसे उस बारे में कोई एडवाइस लेगा, आपका कोई दोस्त हो गया, कोई बाहर का इंसान हो गया, कोई फैमिली मेम्बर हो गया, कोई जान पहचान का हो गया, जब वो शख्स आपके सामने आके उस बारे में एडवाइस लेगा, तब सोचो आपसे बेहतर एडवाइस उसको कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आपने वो चीज़ कर ली, अच्छे से कर ली और फेल हो गए उसमें। अब आपको वहाँ पर एग्जैक्टली पता है कि आपने क्या क्या गलती की थी और क्या क्या अच्छा काम किया था जिसके चक्कर में आप 1 साल सर्वाइव कर गए, ठीक है। सो यहाँ पर एक बेनिफिट है, एक कॉन्सिक्वेंस है। रियलाइज किया आपने, रियलाइज करो बेनिफिट क्या मिला आपको। आपको एक्सपीरियंस मिला, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, नॉलेज मिली उस चीज़ से, उस फील्ड से। लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आप फेल हो गए, पास हो गए, लेकिन टेक्निकली आप फेल भी नहीं हुए। अगर सोचोगे तो फेलियर क्या होता है? फेलियर मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, फेलियर जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती मेरे हिसाब से। स्ट्रगल जो अभी सो कॉल्ड चल रहा ना, स्ट्रगल, मैंने बहुत स्ट्रगल किया मेरी जान, मेरे हिसाब से स्ट्रगल एग्जिस्ट नहीं करता, स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हो, उसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, उन हर्डल्स को आप क्रॉस करके पहुंचते हो, ठीक है। सो इसमें स्ट्रगल कहाँ है, ये तो जर्नी हो गई। हर किसी की लाइफ का एक गोल होता है, हर किसी का एक मकसद होता है, हर कोई अपने मकसद पे पहुंचने के रास्ते में बहुत चीज़ें फेस करता है। बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं, बहुत सी चीज़ें ख़राब होती हैं। कई बार होता है दिन अच्छा जाता है, कई बार होता है दिन ख़राब जाता है। सुबह उठने के साथ कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ, अभी हम बिस्तर से भी नहीं उतरे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके चक्कर में पूरा दिन ख़राब हो गया। होता है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है? इसको ज़रा ध्यान से सुनना, और सिर्फ सुनना मत, समझने की कोशिश करना कि दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है? उन 24 घंटे में से अगर मान लो आपकी लाइफ में, उस पूरे एक दिन में, नॉट इन अ लाइफ, जस्ट इन दैट 24 आवर्स, उस पूरे 24 घंटे में अगर आपके साथ आधे घंटे में कुछ बुरा हुआ, ठीक है, सिर्फ आधे घंटे में, तो आपके पास बाकी के 23.5 घंटे बचे, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस आधे घंटे के चक्कर में ना अपना पूरा दिन ख़राब कर देते हैं, जबकि वो सिर्फ आधे घंटे का हिसाब किताब है। दैट्स जस्ट हाफ आवर शेट, राइट? तो हमारा मूड सिर्फ उसी आधे घंटे ख़राब होना चाहिए था, लेकिन उस आधे घंटे के चक्कर में हमने हमारा पूरा दिन ख़राब कर दिया, पूरा दिन हमने फक कर दिया। क्यों ऐसा होता है? व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज हम इमोशनल हो जाते हैं, हम दिमाग से नहीं सोचते, हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं, और वो सारी बातें पूरे दिन, पूरे पूरे दिन हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। पूरे पूरे दिन हम उस बारे में सोचते रहते हैं कि यार फलाना ने मेरे साथ ये बोल दिया, फलाना ने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरी लाइफ ओके, और वो सुना है ना आपने, एक चीज़ होती है कि खानदानी दुश्मनी हो गई। खानदानी दुश्मनी मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, जानी दुश्मन है, इनके बाप दादाओं ने दुश्मनी शुरू की थी, अब बच्चे, पोते और पर पोते और पता नहीं तीन तीन चार चार जनरेशन कंटिन्यूसली लड़ रही हैं। क्यों ये होता है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द रीज़न? इसका रीज़न ये है कि कभी भी दोनों पार्टियों ने बैठ के इस बारे में बात करने की नहीं सोची, ठीक है? क्या होता है कि जब आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा, क्या बोलेंगे, व्हाट द वर्ड शुड आई यूज़, जब आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील करते हो ना किसी को लेके, जब आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा होता है, जब बहुत आपको, आपके माइंड में उस टाइम पर आप एक माइंड में एक फैसला कर लेते हो, एक डिसीजन ले लेते हो कि सामने वाला गलत तो है, फिर कुछ भी हो जाए, फिर वो आपके सामने कितना भी अच्छा काम करे, ठीक है, आपको लगता है कि वो शख्स गलत ही है, फिर वो आपके लिए चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी अच्छी चीज़ें कर ले, आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छी चीज़ें कर ले, आपके माइंड में वो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने एक बार आपके साथ गलत कर दिया और उसकी जो रेप्यूटेशन है वो आपके सामने गलत हो गई, तो वो हमेशा आपको गलत ही लगेगा, फिर वो चाहे कितना भी कर ले। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जब ये खानदानी दुश्मनी की हम बात करते हैं ना, तो ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। एक बंदे ने किसी के साथ गलत कर दिया, अब वो चीज़ माइंड में बैठ गई, अब वो चीज़ जहनों में बैठ गई कि ये सामने वाला घर गलत है, अब इसके साथ कभी बात नहीं करेंगे। अब सामने वाला अगर गलती से दोस्ती का भी हाथ बढ़ाता है ना, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें लगता है कि सामने वाला षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ, कोई षड्यंत्र का खेल चल रहा है, कोई महाभारत में वो था ना, क्या नाम था, शकुनी मामा, इट फील्स लाइक दैट कि सामने वाला शकुनी मामा है और वो हमारे साथ कोई मेंटल गेम खेल रहा है। बट टेक्निकली ऐसा अगर आप सोचोगे ना, तो ऐसा होता नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। मे भी हो सकता है कि ऐसा हो, बट चांसेस इसके भी हैं कि ऐसा नहीं है, वो बस हमें लग रहा है। जब बाप दादा लड़ते हैं तो अपने बच्चों को साथ में खेलने से मना कर देते हैं कि नहीं, उसके साथ नहीं खेलना है, उस घर के साथ दुश्मनी है। और फिर जब एक छोटा सा बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी 24 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल तक सिर्फ यही सुन रहा है अपने माँ बाप के मुँह से कि सामने वाले घर से दुश्मनी है, सामने वाले घर में नहीं जाना है, सामने वाले घर वाले अच्छे नहीं हैं, उनके साथ हमारी दुश्मनी है, तो उसकी भी, तो उसका भी तो माइंडसेट वैसे ही बन जाता है, उसकी भी मेंटेलिटी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है ना। फिर वो भी यही सोचेगा कि नहीं, सामने वाला इंसान गलत है, वो सही नहीं है, उनके साथ हमारे बाप दादाओं की दुश्मनी है, तो हमें भी करना ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी। फिर जब वो बच्चा शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, फिर वो अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाएगा कि भाई सामने वाले घर में नहीं जाना है, सामने वाले घर से हमारी दुश्मनी है। तो ये क्या हो रहा है? ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। और वहीं अगर कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं लड़ना, जिसको जो मर्जी बोलो, आई डोंट गिव अ फक, उसका वैसा वाला एटीट्यूड हो कि ऐसी तैसी कराने गए तुम लोग, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ सामने वाले के यहाँ दारू पीने, ठीक है, समझ पा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सामने वाले के यहाँ चाय सुट्टा मारने, मैं जा रहा हूँ सामने वाले के यहाँ लंच करने, मैं जा रहा हूँ सामने वाले के यहाँ डिनर करने, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये क्या है? क्या वो शख्स जो ऐसा बोल रहा है कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव पीसफुली, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक पीस, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक लव, राइट? तो वो एक्चुअल में डिसीजन कहां से ले रहा है? व्हाट डू थिंक? इज ही टेकिंग डिसीजन फ्रॉम हिज माइंड और फ्रॉम हिज हार्ट? व्हाट डू थिंक? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ हिज डिसीजन? सोर्स, नॉट रीजन एग्जैक्ट, द सोर्स, व्हाट इज द सोर्स? आई विल से ही इज यूजिंग हिज माइंड, ही इज नॉट यूजिंग हिज हार्ट। वो हार्ट कहाँ यूज कर रहा है? वो अपने डिसीजन में हार्ट नहीं यूज कर रहा, वो डिसीजन, वो हार्ट यूज कर रहा है पीस लाने में। उसका मकसद जो है वो हार्ट से जुड़ा हुआ है, राइट? ही जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड पीस। वो पीस जो है वो रीजन उसके हार्ट से जुड़ा है, बट उसका डिसीजन जो है वो माइंड से जुड़ा है। उसको पता है कि अगर ये सारे लोग लड़ेंगे और अगर मैं भी इनके साथ लड़ जाऊं तो फिर शांति कहां से आएगी? फिर ये दुश्मनी कैसे खत्म होगी? कौन खत्म करेगा? तो उसने ये चीज सोची कहां से? दिमाग से। अब उसने जो फैसला लिया वो दिमाग से लिया। अब वो क्या करेगा? अब वो सबसे लड़ेगा, अपने घर में सबसे लड़ेगा कि ऐसी तैसी कराओ, मैं जा रहा हूं सामने वाले का खाना खाने के लिए, पार्टी हो रही है, अब मुझे उनके साथ दुश्मनी खत्म करनी। अब वो वहां पहुंच जाएगा और मे बी उसका डिसीजन गलत हो, मे बी, यू नेवर नो, मे बी वो जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, मे बी सामने वाले बुरे हों एक्चुअल में, मे बी वो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले हों, मे बी, इसकी भी चांसेस हैं। लेकिन इसके भी चांसेस हैं कि वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब उसके आने वाले आगे के जो 10 जनरेशन थी वो नहीं लड़ने वाली। नाउ दे आर गोना लिव पीसफुली, राइट? दे विल बी फ्रेंड्स, दे विल बी लाइक फैमिली, दे विल बी लाइक अ प्रॉपर लवेबल नेबर, है ना? तो एक तरफ अगर उसकी फैमिली साथ में आ गई एंड कोई वॉर नहीं हुई, फिर तो अच्छा है भाई, चलो ताली बजाओ, चलो बढ़िया, परिवार साथ में आ गया, साथ में खा भी रहे। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई कि सामने वाला एक्चुअल में बुरा है, तब क्या किया जाए भाई? डिसीजन तो गलत हो गया उसका। तो यहां पर एक फैक्ट आता है, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर। उसने वो डिसीजन लिया था तो उसके पास ऑलरेडी इतनी इंटेलिजेंस थी कि उसने इस चीज को भांप लिया था और उसको ऑलरेडी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होंगे। ये लिख के ले लो, ये गारंटीड है। जो बंदा इतना सोच सकता है ना कि मेरे ऐसा करने से खानदानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो उसको ये भी पता होगा कि अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके क्या नुकसान है, उसको ऑलरेडी ये बात भी पता होगी, ठीक है? क्योंकि कोई भी इंसान एक तरफा फैसला नहीं करता। अगर आप एक तरफा फैसला करने वाले शख्स हो तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ के बेनिफिट और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर मैं कोई फैसला कर रहा हूँ तो मुझे उसके बेनिफिट्स भी देखने हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं, और बेनिफिट से ज़्यादा मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान देना है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेस के चक्कर में मैं वो डिसीजन ही ना लूँ और मैं अपने आप को रोक लूँ, वो नहीं कह रहा मैं, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बेनिफिट्स देख रहा हूँ ना, तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान रखना है और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर रहना है। बेनिफिट्स के लिए प्रिपेयर होने की क्या ज़रूरत है? बेनिफिट्स तो आपके लिए बेहतर कर रही है ना, बेनिफिट्स तो आपके लिए काम कर रही है। तो मुझे बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान देना है। क्योंकि जब मैं कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान दूंगा तो जो भी चीज़, जो भी प्रॉब्लम आने वाली होगी, मैं उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाऊंगा, मैं उसके लिए पहले तैयार हो जाऊंगा कि हाँ भाई देखो ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो मेरी जान यही है, बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब होता है। और क्या होता है ना कि मैं ये चीज़ हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यार लाइफ ना बहुत ही सिंपल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बहुत प्लेन है, ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, थोड़ी बहुत है ऑब्वियसली, बट ऑलमोस्ट प्लेन है। इतना भी नहीं है कि हाँ भाई बंदे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना फकड अप हो जाता है उनका माइंड कि फिर अलग ही लेवल चल रहा है उनका, अलग ही गेम चल रहा है लाइफ में, कुछ अलग ही कर रहे हैं वो, इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ध्यान रखो। लाइफ ऊपर नीचे है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ज़रूरी हैं। अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो लाइफ में मज़ा क्या रहेगा? फिर तो बोर हो जाओगे ना, रोज सुबह उठोगे वही हो रहा है, सब कुछ वही चल रहा है, फिर कैसे मज़ा क्या आएगा? हमें बस ऐसा लगता है कि अगर लाइफ बहुत सिंपल होती तो कितना अच्छा होता, बट आप खुद सोच के देखो, अगर ऐसा होगा तो क्या आप जेन्युइनली में खुश रहोगे? ओ हेल नो, हेल नो, मेरे से लिखवा के ले लो, हालत खराब रहेगी, बोर रहोगे, दिमाग खराब रहेगा कि ये क्या है, ये लाइफ है कोई, वही सुबह उठना है, वही चीज़ें करनी है, पता है आने वाले 1 घंटे में क्या होने वाला है। कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, कुछ वो फन नहीं रहेगा। तो अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूरी हैं, ऑब्वियसली ज़रूरी हैं, लेकिन सिंपल है। प्रॉब्लम आती है, हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें बस ऐसा लगता है कि लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं, इसलिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। समझ पा रहे हो? ट्राई करो, थोड़ा और ट्राई करो। क्या होता है कि कई बार चीज़ें एज इट इज़ होती हैं, जैसी हमें दिख रही हैं चीज़ एक्चुअल में वैसी ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम। और 90% का नंबर मेरी जान बहुत बड़ा नंबर होता है। 90% टाइम्स ऐसा होता है कि हम जैसा देख रहे हैं चीज़ वैसी ही है, उससे ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्टली वैसी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी कंडीशनिंग उस तरह से है ना, हमारे माइंड की कंडीशनिंग, हमारा माइंड सेट उस तरह से कंडीशन किया हुआ है कि हमें लगता है यार ये चीज़ इतनी सिंपल हो ही नहीं सकती, इस चीज़ के पीछे पक्का कुछ हो रहा है। जैसे एक चीज़ है ना, हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस का सुना है आपने कॉन्सेप्ट है? एक हिडन चार्जेस, जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ऑर्डर करो, लेट्स से यू वेंट इन टू अ मॉल, यू वेंट इन टू अ स्टोर एंड यू बॉट समथिंग, लेट्स से अ शूज, यू बॉट अ शूज, ठीक है। अब कई बार होता है कि पीछे जब आपके पास बिल आता है तो उसमें बहुत सारे वो प्राइस कैटेगरीज अलग अलग डिवाइडेड होते हैं ना, कि एक्चुअल प्राइस इतने का है और इतना सर्विस टैक्स है, इतना GST है एंड वॉट एवर। उसमें एक कॉलम और होता है हिडन चार्जेस का। अब तो बहुत कम हो गया, बट अभी भी किसी किसी चीज़ में ना आपको हिडन चार्जेस का वो कैटेगरी मिल जाएगी आपको बिल में। कभी कोई भी सामान खरीदो ना, उसके बाद बिल चेक करो, करो एक बार बिल अच्छे से पढ़ो, उसमें एक लिखा होता है हिडन चार्जेस। तो हमें ऐसा लगता है, हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से हो गई है ना, कि व्हाट वी थिंक, कि जो चीज़ हमें सिंपल दिख रही है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये इतनी सिंपल हो ही नहीं सकती, इसके पीछे पक्का कुछ रीज़न है, इसके पीछे पक्का कुछ कॉन्सिक्वेंस छुपा हुआ है, ये इतनी सिंपल कैसे है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि अब जहां हमें सिंपल डिसीजन लेके उसका सोल्यूशन निकल सकता था, अब वहां हम चले गए अपनी जोन में, वहां चले गए हम अपनी फिलॉसफी में, वहां हम सोचने लग गए कि अब इसके साथ ये जोड़ लेते हैं, इसके साथ ये जोड़ लेते हैं, इससे मिल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, उससे ये कर लेते हैं, उससे कर लेते हैं, इससे एडवाइस ले लेते हैं। अरे क्यों लेना है भाई, क्यों लेना है? प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, सोल्यूशन तुम्हारे सामने, पकड़ो, बीच में से काटो, निकालो सोल्यूशन बाहर। आई नो समटाइम्स मैं डार्क हो जाता हूँ, बट इट्स माई स्पेशलिटी, राइट? दैट्स हाउ आई राइट, दैट्स हाउ आई टॉक। इट इट डजेंट मैटर कि मैं डार्क बोलूँ या लाइट बोलूँ, मेरा मैसेज क्लियर होना चाहिए। एंड आई एम श्योर आप लोग समझ पा रहे हो मेरा मैसेज क्या है। सो इट डजेंट मैटर अगर मैं मारने पीटने काटने की बात बोलूँ, तो समझ जाओ बस, ठीक है? बस समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डोंट गो फॉर वर्ड्स, गो फॉर द फीलिंग्स, भावनाओं को समझो, ठीक है? सो यस, तो चीजें सिंपल तो हैं, लेकिन हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। क्यों? कंडीशनिंग, फकिंग कंडीशनिंग, माइंड की फकिंग कंडीशनिंग। वी डोंट वॉन्ट दैट, वी डोंट। अगर हमें हमारी लाइफ सिंपल चाहिए तो क्यों ना हम सिंपल ही रखें, क्यों ना हम हमारे थॉट्स को सिंपल ही रखें। व्हाई डू वी हैव टू फकिंग गो फॉर द हार्डर वे? हर बार मुश्किल रास्ता आसान नहीं होता, या हर बार मुश्किल रास्ते से सोल्यूशन नहीं निकलता। जैसे एक कंडीशनिंग हो रहा है ना हमारे माइंड में, एक और इनबिल्ट किया हुआ है हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए वो चीज़ अच्छी नहीं है, और जो चीज़ को पाने के लिए आप दिन रात एक कर दो, जो चीज़ मुश्किल है वो आपके लिए आसान है, वो या वो आपके लिए फायदेमंद है, वो आपके लिए अच्छी है। हमारे माइंड में ऐसी कंडीशनिंग हुई है ना, कि अगर मुझे ये पेन, मान लो आई हैव अ पेन हेयर, तो अगर मुझे ये पेन, इट्स माई ड्रीम टू बाय दिस पेन, सो अगर मुझे ये पेन आसानी से मिल रहा है, मतलब ये पेन मेरे लिए अच्छा नहीं है, और इसी पेन के लिए अगर मैं 10 साल काम करूं, पैसे इकट्ठा करूं, एंड उसके बाद अगर मैं ये 10 लाख रुपए का पेन खरीदूं, तो ये मेरे लिए अच्छा है। ऐसी हमारी कंडीशनिंग की हुई है ना? लेकिन अब जरा इसको सोच के देखो, ये सेम पेन, एक तरफ मैं उसकी ओरिजिनल ब्रांड में जाऊं और वहां से मैं इसको खरीदूं 20 लाख रुपए में, ठीक है, लेट्स अज्यूम, और वहीं ये सेम पेन, सेम क्वालिटी, सेम चीज मुझे अगर 10 रुपए में मिल जाए तो किस में फायदा है? व्हाट डू यू थिंक? सेम क्वालिटी, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है, बस कंपनी से रिजेक्टेड पीस है, दैट्स इट, जिसको फर्स्ट कॉपी आप बोल सकते हो. फर्स्ट कॉपी भी नहीं, इट्स नॉट इवन अ कॉपी, इट्स अ एक्चुअल मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओन ब्रांड, बट इट्स रिजेक्टेड. वाई? जो थोड़ा सा फॉल्ट होगा कुछ, मे बी थोड़ी सी इंक लीक हो गई होगी, या थोड़ा सा कैप लूज हो गया होगा, और मे बी साइज थोड़ा सा यू नो डिफरेंशिएट हो गया होगा, ऊपर नीचे थोड़ा कम ज्यादा साइज में हो गया होगा. दैट्स द ओनली रीजन कंपनी रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू. ठीक है, जो लोग मार्केट से बिलोंग करते हैं उन लोगों को मेरी बात समझ में आ रहेगी. जैसे कई बार होता है आप शूज लेने जाते हो, मान लो आप मार्केट में आपको गुची के शूज दिख गए, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट्स अ फर्स्ट कॉपी. ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में पीस हो, कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड हो ऑफिशियली, बट वो कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकलिटी. मे बी थोड़ा सा धागा ऊपर नीचे हो गया, और मे बी डिजाइन थोड़ा सा अप डाउन हो गया, और कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया. सो सेम चीज अगर मैं पेन में करूं तो मेरा किस में फायदा है? मैं 10 रुपए में खरीद लूंगा ना, सेम चीज है, इट्स जस्ट अ पेन, आई जस्ट हैव टू राइट, है ना. आई डोंट हैव टू स्पेंड फकिंग 220 लाख रुपीज ऑन अ फकिंग पेन. आई डोंट, राइट? आई जस्ट हैव टू स्पेंड 10 रुपीज एंड आई विल बाय दैट. तो हर बार मुश्किल रास्ता चुनना जरूरी नहीं है, कई बार आप आसान रास्ता चुन के भी सोल्यूशन निकाल लेते हो, कई बार आसान रास्ता चुनना भी आपके लिए फायदेमंद होता है. लेकिन अगेन कंडीशनिंग, राइट? हमारा माइंड उस तरह से कंडीशनड है कि हमें मुश्किल रास्ता ही दिखता है, हमें नेगेटिव ही दिखता है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा, और वो दोनों चीजें आपके सामने होती, मुश्किल रास्ता, आसान रास्ता, दोनों आपके सामने, लेकिन हमारी नजर जो है वो मुश्किल रास्ते पे पहले जाएगी, आसान रास्ते पे बाद में जाएगी. ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी? कंडीशनिंग. तो इस कंडीशनिंग से बचने का क्या तरीका है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे क्या लगता है ना, इस कंडीशनिंग से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंडीशनिंग हमने हमारी नहीं करी है, ये कंडीशनिंग सालों से हमारे कल्चर में इनबिल्ट है. ये कंडीशनिंग हमारे दादा परदादाओं के दिमाग में भी था, हमारे मॉम डैड के दिमाग में, अब हमारे दिमाग में. हम चाहें तो हम अपने आने वाली जनरेशन की कंडीशनिंग चेंज कर सकते हैं, इफ वी वॉन्ट. अदरवाइज हम में और हमारे पुराने जनरेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. एंड अगर आप देखोगे ना, तो अभी चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा बदल गई हैं. लाइक अभी मैं जिन पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पेरेंट्स हैं, ऐसे रास्ते में भी कई बार देख लेता हूँ, कभी किसी जगह मीट पे चले गए, मीट एंड ग्रीट हो रहा है, या कभी किसी स्टेज पर चले गए, लोगों के बीच में चले गए, भीड़ में चले गए, तो कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे हमें जिस तरह से पेरेंट्स यू नो ट्रीट किया करते थे, अब चीज़ें बदल चुकी हैं. नाउ दे अंडरस्टैंड द वैल्यू, नाउ दे अंडरस्टैंड द माइंड, नाउ दे अंडरस्टैंड इमोशंस, नाउ दे रिस्पेक्ट इमोशंस. एक्चुअली पहले मुश्किल था, पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल था. एंड क्या होता है कि इसकी पहल कहीं ना कहीं से होती है, कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होती है, और जो शुरुआत करता है उसको वो सारे भूल जाते हैं, है ना. बट इट डजेंट मैटर, राइट? यू जस्ट हैव टू डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्प्रेडिंग लव, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्प्रेडिंग दैट पीस अराउंड योर एनवायरमेंट. सो यू शुड डू दैट, राइट? यू और एवरीवन शुड डू दैट. ऐसा नहीं कि मुझे कोई नहीं जानता तो मैं क्यों करूं. अरे तभी तो कर सकते हो. तुम सोचो, एक तरफ एक ऐसा शख्स है जिसको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और वो ऐसे मार्केट में आके ऐसी बातें बोले, सो डू यू थिंक इट्स गोना बी गुड? नो, हेल नो, बवाल हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे. तुम सोचो शाहरुख खान निकल के बोले, रिलीजन के बारे में कुछ बोल दे, यू थिंक एवरीवन इज गोना बी पीसफुल? तुमको लग रहा है हर कोई वो पीसफुली सुन लेगा, हर कोई शांत रहेगा वो सुनने के बाद? ओ हेल नो, बवाल हो जाएगा, शाहरुख को कैंसिल कर देंगे, शाहरुख कैंसल्ड, ट्विटर पे हैशटैग चलेंगे, कैंसल शाहरुख खान. चल रहा है ना अभी बॉयकॉट बॉलीवुड, लेटेस्ट सुना होगा आपने. तो जब आपको कोई नहीं जान रहा है ना, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, उसका यूज करो. इफ 5 पीपल नोज यू, इफ 5 पीपल अराउंड यू हु केयर्स फॉर यू, हु लिसन्स टू यू, जस्ट गो फॉर देम. वहां से अपनी जो अपना रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट करो, स्टार्ट इट फ्रॉम देयर. है ना, आपके पास अगर आपके आसपास 5 लोग ऐसे हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, जो सुनना पसंद करते हैं, जो जेन्युइनली आपको सुनना चाहते हैं, उनसे शुरुआत करो। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर हमेशा आगे जाके बड़ा होगा। 5 लोगों को आप अपनी बातें बताओगे, उन 5 में से अगर 2 लोगों का भी माइंडसेट चेंज हुआ, 2 लोगों को भी आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई और उन लोगों ने पहल कर लिया, तो वो 2 लोग आगे जाके 20 लोगों को बताएंगे। ठीक है, और 20 भी नहीं तो चलो, वो 2 लोग, उन 2 लोगों के पास 5-5 लोग ऐसे होंगे जो उनकी बात सुनते होंगे। हर किसी के पास होते हैं, है ना, हर हम सारे एक जैसे हैं। तो आपने 5 में से 2 लोगों को अपनी बात समझा दी, अब उन वो 2 लोग अपने 5 लोगों के पास जाएंगे, वो 2 लोगों को बात समझा देंगे, तो 2 लोगों से 2 लोगों तक पास हो गया, अब वहां से 2 लोगों के पास पास हो गया। तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, टेक्निकली आपने कुछ नहीं किया, आपने बस पहल कर दी। अब वो साइकिल जो है वो शुरू हो गया, अब वो साइकिल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और वो साइकिल आगे जाके इतना बड़ा नंबर बन जाएगा, यू हैव नो फकिंग आइडिया डू, नो वन हैज शिट, नो वन हैव एनी शिट अबाउट दैट, सीरियसली। तो क्या होता है, कई बार हम जो डिसीजन लेते हैं ना, कई बार हम उस पर रिग्रेट भी करते हैं, कई बार हम प्राउड फील करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि आप जब भी कोई डिसीजन लो लाइफ में ना, कभी भी रिग्रेट मत करो, ठीक है, और कभी भी अपने डिसीजन के लिए किसी को ब्लेम मत करो। यस, कई बार क्या होता है कि हम कई ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके चक्कर में हम पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं, ऑन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम दैट रिग्रेट हम लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, हम ब्लेम गेम खेलने लगते हैं कि उसकी गलती है, उसकी वजह से मैंने फैसला लिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने फैसला लिया। बहुत बार होता है ऐसा, हम ब्लेम गेम्स खेलते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है ना कि लाइफ आपकी थी, थॉट्स आपके थे, डिसीजन आपका था, ठीक है, तो जब डिसीजन आपका था तो किसी और को ब्लेम क्यों करना है, फिर हम खुद क्यों नहीं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हम खुद क्यों नहीं ये बोलते हैं कि हाँ मैंने किया, मेरी गलती थी, कोई बात नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं दोबारा लाइफ में कभी ये गलती नहीं करूँगा। हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम क्यों ब्लेम गेम खेलते रहते हैं हमेशा कि तूने किया, यहाँ से वो बोल रहा तूने किया, उसने किया, तूने किया, अरे किया किसने है? अगर एक बंदा उन दोनों में से ये बोल देना कि हाँ मेरी ये गलती थी, सामने वाला अगर थोड़ा सा भी समझदार होगा या थोड़ा सा भी सामने वाले की भलाई चाहता होगा तो वो भी अपनी गलती मान लेगा। लेकिन जस्ट फॉर द फकिंग ईगो, फकिंग माइंड में चलता है कि नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूं, गलती उसने की वो सॉरी बोले, इस चक्कर में क्या होता है कि दोनों में से कोई सॉरी नहीं बोल रहा और लड़ाई चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, दोनों में से कोई डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, लगे हुए। कोई फायदा है इस चीज का? यू थिंक इट्स अ फकिंग नेगेटिविटी, वी हैव टू रन अवे फ्रॉम इट, राइट? सो डिसीजन अपने दिमाग से लो, फिर चाहे वो डिसीजन का रीजन आपके हार्ट से जुड़ा हो, इट डजंट मैटर, लेकिन डिसीजन हमेशा अपने दिमाग से लेना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, द जानी दुश्मनी, द खानदानी दुश्मनी, 2 घरों के बीच में दुश्मनी है, लेकिन उसमें से एक लड़का है जो उस दुश्मनी को खत्म करना चाहता है, उसका रीजन हार्ट से जुड़ा है लेकिन डिसीजन दिमाग से जुड़ा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो रीजन है वो कहीं से भी हो, मे बी आपके हार्ट से जुड़ा हो और मे बी बिटवीन योर लेग्स, इट डजंट मैटर, राइट? बट जो डिसीजन है वो आपके दिमाग से होना चाहिए। और सेम चीज़ हमारे रिलेशनशिप्स में भी होती है, हम कई बार कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना था उस टाइम पर, बस यू नो दैट गर्मी, दैट जोश एंड दैट बिटवीन द लेग्स थिंग, हम उस जो जोश में फैसला ले लेते हैं जस्ट बिकॉज हाँ वी आर डेस्परेट फॉर सेक्स, वी आर डेस्परेट कि हाँ कोई मान जाए, कोई मान जाए, हम रिलेशनशिप में आ गए, सामने वाले से लव नहीं है, सिर्फ लस्ट है, सिर्फ हमें लग रहा है वो लव है, लेकिन एक्चुअल में वो लस्ट है, वी आर देयर जस्ट फॉर द सेक्स। तो क्या होता है, हम उस रिलेशनशिप में तो आ गए लेकिन बाद में फिर हम रिग्रेट करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि लस्ट से एक रिश्ता कितने दिन चलेगा, व्हाट डू यू थिंक? लव के साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो मेरी जान, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव, तो आप उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकते हो, मे बी समहाउ यू विल मैनेज टू स्पेंड लाइफ, उसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो रखा है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर दोनों के बीच में लव है तो फिर भी वो रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर सब कुछ है और लव नहीं है, सिर्फ लस्ट है, तो यू व्हाट डू यू थिंक वो रिलेशनशिप कितने दिन चलेगा? आई डोंट थिंक ज्यादा दिन चल रहा हो, ठीक है? अब वहां पर अगर आपने सिर्फ लस्ट के लिए एक रिलेशनशिप में जाना सही समझा, सो व्हाट डू यू थिंक वो आपका डिसीजन कहां से था? वो दिमाग से था या वो दिल से था? वो दिल से भी नहीं था, ठीक है, वो कहीं और से था, वो आपके पार्ट से था, मे बी फ्रॉम योर डिक और मे बी फ्रॉम योर वजाइना, वट एवर, इट वॉजेंट फ्रॉम योर ब्रेन और इट वॉजेंट फ्रॉम योर हार्ट, राइट? या आई नो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट हो रहा है, बट इट्स लाइक कि अब हमारा जो पॉडकास्ट है वो चेंज हो चुका है, अब यहां पर मैंने एक्सप्लिसिट सर्टिफिकेशन करवा ली अपने पॉडकास्ट की, नाउ वी कैन टॉक अबाउट एनी थिंग वी वॉन्ट, वी कैन टॉक अबाउट सेक्स, वी कैन टॉक अबाउट वट एवर वी वॉन्ट, इट्स एक्सप्लिसिट नाउ, ठीक है? सो इफ यू आर लिसनिंग दिस एंड इफ यू आर गेटिंग ऑफेंडेड तो मेरी जान छोड़ के जा सकते हो, ठीक है, आई डोंट माइंड, बट यहां पर उल्टी सीधी बातें नहीं होती, वी टॉक अबाउट समथिंग दैट अ पर्सन शुड बी कंसर्न अबाउट, राइट? वी टॉक अबाउट लाइफ, वी टॉक अबाउट लव, वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप में सेक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, राइट? अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा बात करना जरूरी है, हर कोई थोड़ी इन चीजों के बारे में बात करता है। आप सड़क पर निकलो, 100 लोगों से बात करोगे तो उसमें से 5 लोग होंगे, सिर्फ 5 लोग होंगे जो रिलेशनशिप के बारे में बात करते होंगे, बाकी के 95 लोग दे आर टॉकिंग अबाउट फकिंग पॉलिटिक्स, दे आर टॉकिंग अबाउट फकिंग रिलीजन एंड वॉट नॉट, बट हमारे पॉडकास्ट में वी डोंट टॉक अबाउट ऑल दोज शेट। अगर हम उनके बारे में बात भी करते हैं, अगर हम रिलीजन के बारे में भी बात करते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करते हैं, तो वी हैव सम सोफिस्टिकेशन इन इट, राइट? वी टॉक समथिंग जेन्युइन, वी डोंट टॉक शेट, राइट? एंड इट्स नॉट माई वर्ड, दिस इज द रिव्यू दैट आई गेट, दिस इज द रिव्यू दैट पीपल टेल टू मी अबाउट माई थॉट्स, अबाउट माई पॉडकास्ट, अबाउट माई वर्ड्स, द पीपल हु रीड माई बुक, द पीपल हु रीड माई पोइट्रीज, द पीपल हु रीड माई स्टोरीज, दे नो वॉट आई मीन, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट माई वर्ड्स, दे अंडरस्टैंड द इमोशंस। सो इफ यू आर न्यू हियर, अगर आप अभी अभी मेरे पॉडकास्ट पर आए हो, सो आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, डोंट टेक द वर्ड सो यू नो लिटरल, डोंट टेक इट लिटरल, समझो थोड़ा फिलोसफिकल है, ठीक है? हम लोग यहाँ बैठ के बकचोदी नहीं करते, हम लोग कुछ बातें समझते हैं और सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अच्छा, कितना वियर्ड है ना, सेम चीज अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ सो इट साउंड ओके इजेंट इट, बट वही चीज अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूँ तो कितना वियर्ड फील होता है ना। अगर इंग्लिश में मैं कोई गाली दूं, इट साउंड ओके, ठीक है, चलता है, बट वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं, सो हाउ वियर्ड, कितना वियर्ड फील होता है ना। सीरियसली, व्हेन आई से कि आई डोंट टॉक अबाउट शिट, इट साउंड ओके, बट वही मैं बोलूं कि मैं बकचोदी नहीं करता, ठीक, कितना वियर्ड साउंड हुआ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स लाइक कि हमारी कंडीशनिंग उस तरीके से हो गई ना, अगेन वही चीज आ रही है, हमारा माइंड उस तरह से डिजाइन हो चुका है, क्योंकि हमने बचपन से देखा ना कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में इंग्लिश को कितनी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, जबकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है भी नहीं। जैसे आप जर्मन जाओगे, जर्मनी जाओगे तो जर्मन बोलते हैं, फिर फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच किस भी होती है, बट वी आर इन टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, राइट? सो इंडिया में हम हिंदी क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज हिंदी इज आर लैंग्वेज ना, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, गुजराती, आई डोंट नो, इतनी सारी लैंग्वेजेस हमारे, सो व्हाई कांट वी जस्ट स्टे इन आवर कंट्री ओनली, व्हाई डू वी हैव टू गो फकिंग इंग्लिश? क्यों? हमारे कल्चर में इनबिल्ट हो गया, हमारी सोसाइटी में इनबिल्ट हो गया, हमारी कंडीशनिंग में इनबिल्ट हो गया। हमें हमेशा से सिखाया गया कि अगर आपको जॉब करनी है तो इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, व्हाट द फक, नहीं चाहिए, राइट? तो ये क्या है, ये सारी बातें जो आज हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है? इसका एक ही लॉजिक है मेरी जान, सिंपल सा लॉजिक है कि फैसले, रिग्रेट दोनों साथ में आते हैं, ठीक है? डिसीजन एंड रिग्रेट्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, हमेशा अलग नहीं है। आप अगर डिसीजन आपका एक गलत हो गया, आप कहीं ना कहीं किसी मोमेंट पर जाके उस चीज को रिग्रेट करोगे, डेफिनेटली करोगे, कोई माने चाहे ना माने, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन आप आज जो डिसीजन लोगे ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ के किसी मोमेंट पे जाके आप रिग्रेट करोगे, जो कि नहीं करना चाहिए टेक्निकली। क्या फ़ायदा है रिग्रेट करने का, बताओ? कोई फ़ायदा है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि रिग्रेट करोगे, रिग्रेट पे बाय द वे हमने एक और एपिसोड बना रखा है, हमने पहले भी रिग्रेट के बारे में बात कर रखी है। अगर आपको वो एपिसोड चेकआउट करना है, सुनना है बेसिकली, तो आप मेरे पॉडकास्ट का एपिसोड्स के लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ है जो सीखने को मिलेगा। अभी काफ़ी टाइम से बाय द वे पॉडकास्ट आ नहीं रहा था, उसका रीज़न है बिकॉज मैं अभी बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया हूँ अपनी राइटिंग में। आई एम राइटिंग अ लॉट, आई एम राइटिंग फॉर फकिंग 24 आवर्स अ डे। रात में दो दो तीन तीन बजे सो रहा हूँ, एंड देन आई एम राइटिंग, फिर सुबह जल्दी उठ के आई एम राइटिंग। सो आई एम राइटिंग 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 एंड राइटिंग, मैं कंटिन्यूसली लिख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया हूँ। इस चक्कर में मैं पॉडकास्ट पर ना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अभी। आज बहुत दिनों के बाद आज मेरा मन किया कि आज बात करनी है, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मैं फ्री हूँ, अभी एक बुक आई है सिर्फ तुम, मतलब सिर्फ तुम नहीं, किताब का नाम है सिर्फ तुम, और काफ़ी अच्छी किताब है, लोगों से काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों को। इट्स सॉर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, बहुत कुछ है एंड में जाके आपको, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें। तो अगर आपके पास टाइम हो तो चेकआउट कर सकते हो वो भी। उसके अलावा दो बुक और अवेलेबल है, दीवाना एन इमोशनल माइंड ऑफ अ सीरियल किलर, एंड सेकेंड बुक है रामायण एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। सो उन तीनों के लिंक्स आपको इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन जाते जाते एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और मन करे तो लिंक पर क्लिक करके एक बार बुक के बारे में पढ़ लेना। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती है, किंडल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो। इट्स इन हिंदी, हिंदी में है, मैं इंग्लिश राइटिंग नहीं करता, मतलब मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हिंदी में लिखूँ, मेरे को हिंदी में मज़ा आता है। क्यों? वही बता ना, भाई हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो मज़ा आता है। और क्या होता है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू बी रेसिस्ट एंड शिट, बट क्या होता है कि जब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और एक तरफ मैं हिंदी में लिखता हूँ, मान लो मैंने एक पेज पे आधे पेज पे हिंदी में लिखा, आधे पेज पे इंग्लिश में लिखा, ठीक है, तो क्या होता है जब मैं हिंदी को लिख के दोबारा पढ़ता हूँ ना, तो इट फील्स कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, यू नो, बहुत ज़्यादा अंदर से बवाल मच जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर एक भूकंप आ जाता है, हड़कंप मच जाता है दिल के अंदर, इमोशंस ऊपर से उभरने लगते हैं। और वही चीज़ अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ ना, तो बहुत फीका सा लगता है ना, क्या लिखा ये, व्हाट इज़ दिस शिट। सीरियसली, मैंने बड़े सारे पोएट्स को सुना है जो इंडिया के हैं, बट दे राइट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में सुनाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग फील कैसे कर रहे हैं यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि आप उस लैंग्वेज में पोइट्री करते हो जिस लैंग्वेज में आप फील करते हो, ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा फिलोसफिकल है कि अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं अपने माइंड में भी हिंदी में सोच रहा हूँ, है ना, ये मेरी लैंग्वेज है, मैं उसी लैंग्वेज में सोच रहा हूँ और वही सोचा हुआ मैं पेपर पे कागज पे उतार रहा हूँ, ठीक है, मैं फील कर रहा हूँ। बट इंग्लिश में हाउ इज दिस पॉसिबल? इंग्लिश इज नॉट योर लैंग्वेज। इंडिया में रहते हो, आपकी मदर टंग क्या है? हिंदी है, तो क्या आपके थॉट्स भी तो हिंदी में होंगे ना, आप इंग्लिश में थोड़ी सोच पा रहे हो? ये हेल नो, क्योंकि आप खुद के साथ भी कॉन्वर्सेशन करते हो ना, 24 घंटे में से 22 22 घंटे 23 23 घंटे आप खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करते हो, आप खुद से बात करते हो, तो जब मैं खुद से बात करता हूँ तो मैं इंग्लिश में तो बात नहीं करता, मैं हिंदी में बात करता हूँ। तो पोएट्री भी क्या है? पोएट्री खुद से बात करना है ना एक तरीके से, आप पहले खुद से बात करते हो, फिर आप उसी बात को कागज पे उतारते हो, फिर उसी बात को आप लोगों को सुनाते हो, फिर लोग उन बातों से कनेक्ट करते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ पोएट्री, दैट्स द लॉजिक ऑफ पोएट्री, आई थिंक सो, राइट, आई गेस, आई थिंक, आई एम श्योर, है ना। तो हाउ द फक कैन यू थिंक इन इंग्लिश डूड? अगर लेट्स से आप यू आर अ सिटीजन ऑफ अगेन व्हाट यू से यूएस और ऑस्ट्रेलिया और वट एवर, अगर आप वहाँ के सिटीजन हो, आप हमेशा से वहाँ रहे हो, बचपन से वहाँ रहे हो, आप अब भी वहीं रह रहे हो, और फिर आप यहाँ आके अगर आप इंग्लिश में पोएट्री करो, इट मेक सेंस, क्योंकि आपकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी डिजाइन हो गई है कि आपकी जो मदर टंग है वो वैसी बन गई है, आपकी मदर टंग इंग्लिश हो गई है। आई गेट दैट पॉइंट, ओके, एंड आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है, लेकिन इसका क्या लॉजिक है कि मैं बचपन से इंडिया में रहा हूँ, मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं सबसे हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन जब मैं पोइट्री सुनाता हूँ, जब मैं कविता सुनाता हूँ, तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ? व्हाई? एंड बाय द वे, जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड, छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं रेसिस्ट नहीं बनना चाह रहा, ठीक है, मैं बस अपना पॉइंट दे रहा हूँ, इट्स एक्सप्लिसिट ना, तो एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीच, राइट? तो यार हम लोग कर रहे हैं, और राइट टू स्पीच से एक और चीज़ याद आई, पता है, आज ही डिस्कशन हो रहा था, मैं घर पे था, किसी से डिस्कस कर रहा था इस बारे में, सो उन्होंने मेरे को बोला कि इस देश में ना कन्फर्मिज्म है, इस देश में आपको सवाल पूछना अलाउड नहीं है, अगर आप इस देश में सवाल पूछते हो तो आप ट्रबल में आ जाओगे, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। मेरे माइंड में एक चीज़ खटकी, मुझे ये लगा कि ये जो बात है ना कि इस देश में आप सवाल नहीं पूछ सकते, ये बात आधी सच है आधी नहीं है, आधी एग्री करता हूँ मैं, आधी भी नहीं, 80% डिसएग्री करता हूँ, सिर्फ 20% से एग्री करता हूँ कि इस देश में आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन जो 80% है वो एक्चुअल में क्या है वो बताता हूँ। वो 80% ऐसी बात है कि आप जब किसी गलत टाइम पर किसी गलत शख्स से गलत सवाल पूछोगे ना, तो आपको जवाब भी गलत ही मिलेगा, या आपको रोक दिया जाएगा, आपको टोक दिया जाएगा, वहीं आप वहाँ ट्रबल में आओगे। लेकिन अगर आप सही सवाल सही टाइम पे सही शख्स से कर रहे हो तो आपको जवाब भी मिलेगा, मेरा मानना है। सोच के देखो ज़रा, अगर मान लो मेरे घर में बल्ब चेंज कराना है या मेरे वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है मेरे रूम में, ठीक है, और मैं पहुंच जाऊं कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, मैं पहुंच जाऊं किसी सर्जन के पास, ठीक है, कि सर मेरे घर पे बिजली की प्रॉब्लम है ठीक कर दो, तो क्या मुझे वहां से कोई जवाब मिलेगा? गाली दे के भगाएगा वो उल्टा, ठीक है, जूते पड़ेंगे वो अलग, तो मुझे वो ठीक कराने के लिए कहाँ जाना है? मुझे इलेक्ट्रीशियन के पास जाना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा कि भाई मेरे घर पे वो ऐसा ऐसा हो रखा है ठीक करो, वो घर पे आएगा ठीक करेगा, है ना। वैसे ही अगर मान लो मुझे कैंसर है, लेट्स से मैं कैंसर का पेशेंट हूँ और मैं पहुँच जाऊँ किसी प्लम्बर के पास या पहुँच जाऊँ किसी इलेक्ट्रीशियन के पास कि भाई मेरा कैंसर ठीक करके दो, वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नो डाउट। उसमें कोई सेकेंड थाट है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं, उसमें कोई सेकेंड थाट नहीं, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, राइट? तो इसमें कन्फर्मिज्म कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता कोई कन्फर्मिज्म है। और वहीं अगर इसको ऐसे सोचो कि जैसे हम छोटे थे, जब हम स्कूल में सवाल पूछा करते थे, तो उस टाइम पे टीचर्स हमको बोलते थे कि तुम्हारा जितना जितने बार तुम्हें सवाल पूछना है तुम पूछो, लेकिन जब हम पूछते थे तो हमें डांट पड़ती थी, है ना। तो यहां पर जब मैंने बोला कि मैं उससे सिर्फ 20% एग्री करता हूँ, 80% डिसएग्री करता हूँ, वो 20% मेरा यहाँ आ रहा है कि कुछ कई केसेस ऐसे होते हैं नो डाउट, जहाँ पर हमारा सवाल पूछना हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, हमारा सवाल पूछना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नो डाउट, आई डोंट डिसएग्री ऑन दैट। लेकिन 80% केसेस में हमें सही टाइम पर सही शख्स से सही सवाल पूछोगे तो हमें सही जवाब ही मिलेगा, ठीक है। सो कन्फर्मिज्म जैसी चीज नहीं है ये, बस दिस इज जस्ट अ फैंसी वर्ड दैट इज ओवर यूज्ड, आई थिंक लोगों ने बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रखा है इस वर्ड को, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है बट रियलिटी नहीं है ये, बस लोगों ने बस ओवर यूज किया हुआ, ओवर रेटेड वर्ड है ना ये सारे, स्ट्रगल और फकिंग क्या बोले ये कन्फर्मिज्म और पता नहीं वट एवर वॉट नॉट। तो हमें हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। देखो प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप क्या सुन रहे हो या लोग क्या बोल रहे हैं या क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज आई ऑलवेज से ना दैट राइट एंड रॉन्ग इज जस्ट सब्जेक्टिव, राइट? राइट एंड रॉन्ग सब्जेक्टिव है, एक्चुअल में जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है और मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है, इट्स सब्जेक्टिव। आपकी जगह पर आप सही हो, मेरी जगह पर मैं सही हूँ, दैट्स अ डिफरेंट टाइप, राइट? दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक, दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेट, इट्स अ टोटली डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। बट आप इसको ऐसे सोचो कि उससे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या परसीव कर रहे हो, आप क्या ग्रैब कर रहे हो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, आप क्या ग्रैब कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? तो अगर मेरे आसपास सिर्फ नेगेटिविटी है, तो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में एक चीज बात की थी एक चीज के बारे में, याद है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साथ में चिपके हुए आते हैं, दोनों अलग नहीं है, राइट। पॉजिटिव अगर आएगा तो उसके साथ नेगेटिव भी आएगा, और अगर हम नेगेटिविटी परसीव करेंगे तो उसके साथ पॉजिटिविटी भी ऑटोमेटिकली आएगी। हमने इस बारे में बात की थी, याद है। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे आसपास नेगेटिविटी है ना, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि चिपकी हुई है ना दोनों आपस में। तो अगर हमें नेगेटिविटी दिख रही है तो मतलब हमें पॉजिटिविटी भी दिख सकती है, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ बढ़ चुका है, हमारा माइंड उस तरफ जा चुका है, डाइवर्ट हो चुका है, उस वे में घूम चुका है, उस चक्कर में हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर हमने उन नेगेटिविटी को छोड़ के अगर हमने पॉजिटिविटी पकड़ लिया, और सिर्फ हम पॉजिटिविटी की अगर हम आदत डाल लें, तो लाइफ में कितनी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, हमारा माइंड सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही देखेगा। नेगेटिविटी उसके साथ आएगी, ऑफकोर्स आएगी, लेकिन हमें नेगेटिविटी बॉदर नहीं करेगी, हमारे लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं डालेगी, आएगी उसके साथ, कॉन्सिक्वेंसेज बन के आएगी, है ना। उसके फायदे पॉजिटिविटी हो गई, हमें पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो भी आएगी, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज बन के आएगी, नुकसान बन के आएगी, इक्का दुक्का। अगर 80% बेनिफिट्स है तो 20% कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो बेनिफिट्स की तरफ मुड़ जाएगा, हमारा फोकस फायदों की तरफ चला जाएगा, कि हमारी लाइफ में कैसे वो चीज़ इफेक्ट डाल रही है इन अ पॉजिटिव वे। सो ये बेसिकली ये पूरा एपिसोड क्या था, इट्स सॉर्ट ऑफ अ, आप सोचोगे इसके बारे में तो इट्स लाइक कंडीशनिंग, है ना। ये कंडीशनिंग की बातें हुई आज। आज हमने इन चीज़ों के बारे में बात की कि हम कैसे अपने माइंड को फॉर द पॉजिटिव पर्पस हम कंडीशन कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट पॉजिटिव वे, कि हम नेगेटिविटी की तरफ क्यों देखते हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं देखते। वी टॉक्ड अबाउट डिसीजंस, वी टॉक्ड अबाउट डिसीजंस फ्रॉम हार्ट एंड डिसीजंस फ्रॉम माइंड। हमने उसके बारे में आज खुल के बात की, हमने बात की कि दिल से अगर हम फैसला लें तो क्या होगा, दिमाग से फैसला लें तो क्या होगा, हमने उसके बारे में बात की, राइट। और किस बारे में बात की, हमने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी सी बात की, है ना, रिलेशनशिप, वो चीज़ें कैसे हमारे रिलेशनशिप में इफेक्ट डालती हैं उसके बारे में बात की, खानदानी दुश्मनी, इन चीज़ों के बारे में बात की, रिग्रेट्स के बारे में बात किया, कितना बात किया आज, मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया, मे भी गला सूख रहा है, बट हु केयर्स, है ना। जब आपको सुनने वाले लोग तैयार बैठे हों अपने कान खोल के, तो आप बोलने के लिए कैसे पीछे हट सकते हैं, है ना, आपका बोलना जरूरी है मेरी जान, तो इसलिए रुक जाओ। तो मेरी जान, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। मैं अगेन बता रहा हूं, 3 बुक ऑलरेडी आ चुकी है, 4th इज ऑन द वे, काफी टाइम लगने वाला है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ, पहले मैंने पता है एक्चुअली मैं ये भी बता देता हूँ, डिस्क्लोज कर देता हूँ, पहले डिस्क्लोज कभी किया नहीं किसी के सामने, मैं आज कर देता हूँ। क्या सीन था, द 3 बुक्स आर लाइक फिक्शन, ठीक है, इट्स नॉट लाइक, इट्स एक्चुअली अ फिक्शन, तीनों फिक्शन बुक्स हैं, इट्स अ नॉवल। बट जो मेरी 4th थी ना, 4th के लिए मैंने सोचा था कि मैं इसको नॉन फिक्शन रखूंगा, 3-4 कॉन्सेप्ट थे मेरे माइंड में, मैं बताऊंगा नहीं, आई वोंट डिस्क्लोज दैट मच, बट मैं बताऊंगा 3-4 कॉन्सेप्ट थे मेरे माइंड में, मैं सोच रहा था कि इस बार मैं नॉन फिक्शन लिखूंगा, ठीक है। बट मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, मैंने एक बुक स्टार्ट कर दिया था अभी कुछ दिन पहले, आई रोट फ्यू लाइन्स फ्यू पैराज, बट मेरा माइंड दोबारा से बदल गया, क्योंकि मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया सडनली, दैट आई वॉज लाइक, मे को अब नहीं लिखना नॉन फिक्शन, अब मे को फिक्शन लिखना है, द थिंग दैट आई एम स्पेशलाइज इन, द थिंग दैट आई एम बेस्ट एट, आई एम बेस्ट एट फिक्शन राइटिंग, आई एम नॉट बेस्ट एट नॉन फिक्शन राइटिंग। मैं लिखना चाहता हूँ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, वो भी करूँगा, ऐसा नहीं है, बट अभी जो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लिक हुआ है ना, मुझे उस पर पहले काम करना है, उसके बाद मैं नॉन फिक्शन पे जाऊंगा। तो पहले आई एम गोना राइट अ फिक्शन, 4th one, वो भी फिक्शन होगी, तो पहले उस पर काम करेंगे, उसके बाद फिर नॉन फिक्शन पे आएंगे पक्का। सो अभी जो 3 बुक्स हैं मेरी, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वो चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, एक बार पढ़ के देखो, मज़ा आए तो अच्छा है, ना मज़ा आए तो भी मेरे को बताओ, ईमेल करो, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, मुझे आप लोगों के रिव्यूज़ पता है बहुत मैटर करते हैं। मेरी दीवाना पे जो रिव्यूज आया था भाई साहब, दीवाना पे जो आप लोगों ने रिव्यू दिया, जिस हिसाब से मुझे चीज़ें बताई, मज़ा आ गया। उसके बाद रामायण लिखी थी, रामायण पे आप लोगों ने जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया था, ओए होए होए होए, और सिर्फ तुम तो अभी अभी आइए, इट्स नॉट इवन अ वीक, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ उस बुक को आए हुए, अभी अभी आइए, सो आई एम वेटिंग, अभी कुछ लोगों ने रिव्यूज देना शुरू किया है, धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, अभी आप लोग भी पढ़ोगे उस पर रिस्पॉन्ड करोगे। एंड आई लव इट व्हेन दे से कि मैं पिछले वाली बुक में मैंने जो मिस्टेक की, अब इस वाली बुक में मैंने वो नहीं किया। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मेरी जान बड़ी खुशी होती है कसम से। सो माई होल पॉइंट इज कि हमें जितनी बातें करनी थी कर ली है, और भी बहुत कुछ है कहने को, और भी बहुत कुछ है जो बाहर निकालना है। क्योंकि क्या होता है ना कि चीजें जितने सालों से, हजारों सालों से जो चीजें जैसी चलती आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो आगे भी वैसी ही चले। हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या हम वो स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, क्या हम पहल करने के लिए तैयार हैं। अगर हम पहल करने के लिए तैयार हैं तब तो बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, चीजें बदलेंगी। लेकिन अगर हम पहल ही नहीं कर सकते तो हमारा इस बात का भी हक नहीं बनता कि हम कहीं जाके कंप्लेन करें। ठीक है, आपको कोई चीज चेंज करनी है, आपके इन्वायरमेंट में चेंज करनी है, आपके सोसाइटी में बदलनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे बढ़ो, स्टेप लो, चेंज करो। टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, है ना। मे बी आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, अगले महीने, अगले साल, 10 साल, आने वाले अगले 20 साल में तो चेंज होगा ही होगा। आपके मैसेज कहीं तो पहुंचेंगे, किसी के कान तक तो पहुंचेंगे। और अगर आप 100 लोगों को एक चीज बताते हो, उसमें से अगर एक इंसान के कान में घुस के, दिमाग में घुस गई वो बात, तो वो आपका काम क्या बोलते हैं, संपूर्ण हुआ, संपूर्ण नहीं, संपन्न हुआ, वट एवर। ठीक है, सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपकी बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप कर रहे हो, क्या आप कोशिश कर रहे हो, क्या आप स्टेप ले रहे हो, क्या आप चीजें बदलने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन आपको वो समझ में आ गया, उस दिन सब समझ में आ गया। ठीक है, सो मेरी जान आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।